नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध द्वारा दिखाया गया मार्ग और ज्ञान पूरी मानवता के लिए है। राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 कल से जयपुर में शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के नए कानूनों को लागू करने में वकीलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और गिरावट के साथ ही सर्दी के तेवर तीखे, माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु से नीचे पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान बुद्ध द्वारा दिखाया गया मार्ग और ज्ञान पूरी मानवता के लिए है और उनके पवित्र अवशेष मात्र कलाकृतियां नहीं बल्कि देश की विरासत का अभिन्न अंग हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पेपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध के ये पवित्र अवशेष भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि एक सदी से अधिक के लंबे इंतजार के बाद ये अवशेष भारत लौटे हैं।
भगवान बुद्ध के पवित्र रिलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य है। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती, गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भगवान बुद्ध का दर्शन भारत की अनूठी आत्मा का दर्शन है।
प्रधानमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में भारत का संस्कृति मंत्रालय न केवल पुरातात्विक संपदाओं का संरक्षण कर रहा है, सांस्कृतिक परंपराओं का उन्नयन करने के लिए काम कर रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का डिजिटाइजेशन कर रहा है, सांस्कृतिक परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रहा है और साथ साथ में विश्व के पटल पर भारत की इस अनूठी संस्कृति को प्रदर्शित करने का प्रयास भी कर रहा है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज देश की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी का निरीक्षण किया। श्री वैष्णव ने बताया कि ये रेलगाड़ी रात्रिकालीन और लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल की लंबी दूरी की यात्राओं में ये महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी तेज यात्रा, बेहतर आराम और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित है।
वंदे भारत स्लीपर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के संकल्प का हिस्सा है। ओवरनाइट जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर एक टोटली नए डिजाइन से बनाया गया है। हर एक चीज का ध्यान रखकर इस ट्रेन को डिजाइन किया गया है। शुरुआत गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में पहली सर्विस चालू होगी वंदे भारत स्लीपर की और इस साल करीब करीब 10 और ट्रेन बनेंगी। टोटल 12 ट्रेन का इस साल का टारगेट है।
राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कल से जयपुर में किया जा रहा है। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 6 जनवरी तक ये समिट होगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि इसमें स्टार्टअप्स, निवेशक, नीति निर्माता, उद्यमी और क्रिएटर्स जुटेंगे। वे डिजिटल एग्रीकल्चर, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जल प्रबंधन, टूरिज्म, वाटर गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई अहम विषयों पर मंथन करेंगे। इस दौरान स्टार्टअप पिच सत्र, सेक्टोरल सेशन, हैकाथॉन, कॉमिकॉन, फिल्म फेस्टिवल और राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस भी होगी। समिट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव और जितिन प्रसाद सहित देश विदेश की कई हस्तियां शामिल होंगी। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से ईसीआई नेट ऐप को बेहतर बनाने के लिए 10 जनवरी तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में तैयार ये एकीकृत ऐप पहले की 40 अलग अलग निर्वाचन सेवाओं जैसे वोटर हेल्पलाइन और सी विजिल को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है। इस ऐप के माध्यम से मतदाता सेवाओं, मतदान रुझानों और इंडेक्स कार्ड के प्रकाशन में तेजी आएगी। इसका सफल परीक्षण बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किया जा चुका है। नागरिक गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का आधिकारिक शुभारंभ इसी महीने किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश के नए कानूनों को लागू करने में वकीलों की बड़ी भूमिका है। श्री बिरला आज कोटा में अभिभाषक परिषद की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने इस दौरान आश्वासन दिया कि कोटा में नए न्यायालय भवन का निर्माण जल्द होगा। श्री बिरला ने कहा कि सभी को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के प्रयास होने चाहिए।
गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस अपेक्षा से अदालत में आता है कि मेरे पास धन नहीं है, मेरी राजनीतिक सामाजिक ताकत इतनी नहीं है, लेकिन मैं न्यायालय में जाऊंगा तो न्यायमूर्ति मुझे निश्चित रूप से न्याय देंगे। और इस अपेक्षाओं को हमें जिंदा रखना है। जब कभी कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आए, धन का अभाव हो, लेकिन आपको लगता है कि इसको न्याय मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से इस कर्तव्य दायित्व को हम निभाएं। उस व्यक्ति को जब न्याय मिलेगा तब भारत का लोकतंत्र जीवंत रहेगा। लोक अदालतों के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण करें। न्याय की एक भूमिका ही सबसे बड़ी है, सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय।
उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने आज कोटा में 3 दिवसीय हाड़ौती ट्रैवल मार्ट 2026 B2B प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य जयपुर और उदयपुर के अलावा प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना है। दिया कुमारी ने बताया कि कोटा हाड़ौती क्षेत्र में चंबल रिवर फ्रंट, वाइल्ड लाइफ और किलों जैसे कई आकर्षण हैं। अब कोटा को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोटा में एयरपोर्ट शुरू होने से और बेहतर रोड कनेक्टिविटी से यहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
ये भी हर टूरिस्ट के कैलेंडर में हो, हर टूरिस्ट जो राजस्थान आए वो यहाँ पर भी, एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, रोड्स अब बहुत अच्छी हो गई है। अब जो ट्रैवलर है ना वो नई जगह पे जाना चाहता है, वो कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता है। यहाँ की जो बोट सफारी है आपकी बहुत सुंदर अच्छी है। हम लोग भी अब इन चीजों को प्रमोट करेंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी प्रमोट करेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से।
एनसीसी कैडेट गणतंत्र दिवस शिविर 2026 में देश भर से कुल 2,406 एनसीसी कैडेट हिस्सा लेंगे। इसमें से 898 लड़कियां हैं। पिछले वर्ष की तुलना में सभी राज्यों में बालिका कैडेट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नई दिल्ली में एनसीसी के लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख से 127 कैडेट और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से 131 कैडेट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 25 मित्र देशों के कैडेट और अधिकारी भी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत समारोह में हिस्सा लेंगे। जयपुर में पहली बार आयोजित हो रही आर्मी डे परेड को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। परेड की रिहर्सल और मुख्य आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस आयुक्तालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये परेड जयपुर में NRI चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल होते हुए महल रोड तक आयोजित की जा रही है, जिसे आमजन 9, 11, 13 और 15 जनवरी को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक देख सकेंगे। दर्शकों के बैठने की व्यवस्था अक्षय पात्र मंदिर के सामने की तरफ की गई है। महल रोड के 5 किलोमीटर के दायरे में इस दौरान ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही रिहर्सल अवधि के दौरान पतंग उड़ाने पर भी रोक लगाई गई है। ड्रोन और पतंग से सेना के विमानों की उड़ान में बाधा और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल के आसपास रहने वाले लोगों, किरायेदारों, दुकानदारों और फैक्ट्री संचालकों को कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस आयोजन में अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि 9 जनवरी को आयोजित होने वाली सेना दिवस परेड मातृशक्ति को समर्पित की गई है। और अब मौसम। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और गिरावट के साथ ही सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। मौसम विभाग द्वारा आज जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार लगभग सभी स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। माउंट आबू में तापमान लुढ़ककर जमाव बिंदु से नीचे दर्ज हुआ। वहीं मैदानी इलाकों में सीकर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में भी रात के पारे में गिरावट से सर्दी बढ़ गई है। इस बीच कई स्थानों पर सुबह घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने राज्य के अगले 2-3 दिन भी कई स्थानों पर घना कोहरा रहने की संभावना जताई है। आगामी 2-3 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट होने और राज्य के उत्तरी भागों में शीतलहर की संभावना है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान भी सामान्य से 2 से 5 डिग्री नीचे दर्ज होने और कहीं कहीं दिन के बेहद ठंडा रहने की भी संभावना है। जयपुर नगर निगम की ओर से जयपुर शहर में 26 रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं, जिनमें निराश्रित लोगों के लिए रुकने, गर्म बिस्तर और भोजन की मुफ्त व्यवस्था की गई है। आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने बताया कि सर्दी को देखते हुए रैन बसेरों की लगातार निगरानी की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध द्वारा दिखाया गया मार्ग और ज्ञान पूरी मानवता के लिए है। राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 कल से जयपुर में शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के नए कानूनों को लागू करने में वकीलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और गिरावट के साथ ही सर्दी के तेवर तीखे, माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु से नीचे पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।